आज के पूरे पारे पे एक नज़र रखेंगे और फिर देखेंगे कि पिछले पारे के साथ इसका क्या रब्त है। पिछले पारे की आखिरी आयत थी, ल तजिदन न अशद नासी अदावत लिल्लसी न आमनुल यहूद अलयहूद वल्लसी न अशरकू वल तजिदन न अक्रबहुम मवद्दत लिल्लजी न आमनु अल्लजी न कालू इन्ना नसारा ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ। इसमें अल्लाह सुबहाना ताला ने एक हकीकत खोल दी, और वो क्या थी कि मुसलमानों से या ईमान वालों से दुश्मनी में नसारा का दिल नरम है यहूद और मुशरिकीन की निस्बत। क्यों? ज़रा सा इसको समझिए। अब आपके पास पारे का मजमून और रब दिया जा रहा है कि पिछली आयत में तो एक बात थी, आज के पारे में आयत 83 में वह इज़ा समी माउनजिला इलर रसूल से आगे तक में इसी बात की दलील आ रही है। निजाशी से 70 लोगों का एक लश्कर नबी सल्लम के पास आया था कि हमें दीन की बातें सिखाइए। उस लश्कर के आने पे क्या हुआ वो हम उन आयतों पे लेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात इस पारे के पर एक नज़र रखते हुए हम समझेंगे कि जब हम एक पारा खोलते हैं तो उसमें हमारे साथ क्या होता है। पिछले पारे में हमने नसारा का बिगाड़ देखा था, सुम्मा कसत कुलूबुकुम वली कैफियत जो थी। और याद रखिए कि बनी हुई कौमें बिगड़ जाती हैं और बिगड़ी हुई कौमें बन जाती हैं। कौमें कैसे बिगड़ती हैं नोट कीजिएगा। सबसे पहले वो गैर मुस्लिमों के कल्चर को कबूल करती हैं, फिर उनकी इबादत के तरीकों को अपनाने लगती हैं, फिर उनके रस्म व रिवाज को अपनाने लगती हैं, और होते होते हर रस्म और कल्चर के नाम पर कोई ना कोई अकीदा उनमें आने लगता है। अगर आज हम उम्मत मुस्लिमा को देखें और ख़ास तौर पे बरसग़ीर पाक व हिंद में रहने वाले देसी लोग जो कि हम सब हैं, वो देखते हैं कि हम एक तवील अरसा हिंदुओं के साथ रहे, तो जब हिंदुओं के साथ रहे बरसग़ीर पाक व हिंद में तो उनकी बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर आ गईं। अब उन नामों से तो नहीं आनी थी जिनसे वो करते थे, हमने नाम बदल दिए। जैसे वो तीजा करते थे तो मुसलमानों ने कुल करने शुरू कर दिए। आज आप सभी चीज़ों को देखते हैं, वो होली मनाते दिवाली मनाते, हमने शब्बे बारात का तसव्वुर उनसे लिया, रूहों के आने जाने का तसव्वुर 15 शाबान के साथ कर दिया। बिल्कुल जैसे आज हम मुसलमान हनूद यहूद और ईसाइयों को देखकर बिगड़े हैं। ईसाई भी अपने दौर में उस दौर के मुशरिकों और पेगन्स को देख के बदले थे, लेकिन ईसाइयों के बिगाड़ में और यहूद के बिगाड़ में एक बहुत बड़ा फ़र्क था। और वो क्या था, मैं आपको एक मिसाल दूंगी। किसी के पास एक मीटर हो कि इसे कपड़ा नापो, हम सब जानते हैं कि मीटर के अंदर 40 इंच होते हैं, 40 इंच होते हैं। अब कोई एक शख्स किसी को मीटर के नाम पर 38 इंच दे दे, और जिसके हाथ में वो दिया उसे कहा कि कपड़ा नापो, वो बड़े इखलास से बड़ी मोहब्बत सच्चाई से कपड़ा नापते, कोई दुकानदार जहन में ले आइए, मीटर गलत है लेकिन जो नाप रहा है वो बिल्कुल मुखलिस है तो वो तो नापेगा ना। अब वो क्या कर रहा है, वो काम तो कर रहा है अपने हिसाब से सही, लेकिन पीछे से गड़बड़ थी इसलिए गलत काम हो गया। इसके बरक्स एक दूसरा शख्स है, उसके पास है 40 इंच का ही मीटर, लेकिन वो डंडी मारता है, वैलुल्लिल मुतफ़िफ़ीन, जो हाथ की सफाई दिखाता है। अब उसको पता है कि मैं गलत नाप रहा हूँ, दोनों में क्या फ़र्क है। यही फ़र्क आप यहूद और नसारा का लीजिए। नसारा में बिगाड़ था लेकिन वो जहालत या नासमझी की बुनियाद पे था, वो दिल के नरम थे रकीक थे, जबकि यहूद तो जानते बूझते 38 इंच नाप रहे थे 40 इंच से। इसीलिए उनको मखदूब कहा गया सूरत फातिहा की रोशनी में और भी लोगों की तरह, और नसारा को दौलीन कहा गया। तो अब ये अगला पारा जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये दौलीन के पास किस तरह से हकीकत और बात पहुंचाई गई, तो इस पूरे पारे में आपको जो चीज़ मिलेगी वो क्या है कि हक की तलब हर दिल में होती है, मार्फत इलाही हर एक का हक है, लेकिन ये वक्त के दाइये दीन की समझ बूझ होती है, वक्त के उलमा और वक्त के दीनदारों का फ़र्ज़ होता है कि लोगों को पहचाने। और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कूट कूट के भरी हुई थी कि वो किस तरीके से लोगों को जान लेते थे। हबशा से जब ये ग्रुप आया जिनका यहाँ तذکرہ आ रहा है, आपने उनको इज्जत दी, उनका इहतराम किया, उनको अपने अपने तरीकों के साथ वहाँ काम करने और इबादत का मौका दिया। नजरान से एक वफद बाद में आता है, मस्जिद नबवी में उन्होंने अपने तरीकों के मुताबिक इबादत की। इसके लिए एक हौसला चाहिए होता है। आज मुसलमानों में जो खराबियाँ आई वो तो अपनी जगह एक बहुत बड़ी खराबी आ चुकी है, टेम्पर लूज कर जाते हैं, हमारे अंदर हौसला नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। और अगर ज़रा कोई ऐसी बात करे तो कहते हैं ये कौन सी हिकमत है, ये कौन सी नरमी है। तो आप अपने ऊपर लेकर देखिए, आप किसी के घर जाए और बोले खा लो, रखा है खाना, खाते क्यों नहीं हो, तो आपके गले से लुकमा उतरेगा। कितनी इज्जत और प्यार से आप शादियों में, दावतों में, खानों में आइए ना, प्लीज़ बैठिए, ये हमारी खुशी है। शादी हॉल में बुलाकर कभी कोई तान नहीं देता, अरे भूखे थे ना, खा लो खाना, कभी नहीं खाया ना, अब खा लो। ये टोन ही मेरी आपको कितनी बुरी लगेगी। तो आइए ज़रा पहले तो अखलाक के नबी देखते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बखा था। आज हमारा दिल सख्त हो चुका है, पत्थर दिल हैं हम लोग, इल्ला माशाल्लाह। इबादत भी करते हैं और सख्त होते जाते हैं, अपनी नेकी दूसरे को और बड़ा गुनाह बनाते हैं। तो अखलाक के नबी देखते हैं। और आज का टॉपिक क्या है बेटा, अबुल कासिम की बात मान लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ ये के मुसलमानों पर शफीक और मेहरबान थे, बल्कि वो जो आप पर ईमान नहीं लाए थे इनके साथ भी उम्दा सलूक करते थे। एक यहूदी लड़का जिसका घर अल्लाह के रसूल के घर के करीब ही था, आपकी खिदमत किया करता था, आपके छोटे छोटे काम करता, आपके लिए वुजू का पानी लाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर या मस्जिद में जाने लगते तो आपके नालीन मुबारक सामने रख देता। किसी को पैगाम देना होता या किसी को कोई चीज़ देनी या लेनी होती तो ये भाग कर जाता और आपका काम करता। इस लड़के के नाम की वजाहत रिवायात में नहीं आई और नाम मालूम होने से हमें फ़र्क क्या पड़ता है। एक मरतबा वो यहूदी लड़का बीमार हो गया और कई रोज़ तक आपकी खिदमत के लिए ना आ सका। अल्लाह के रसूल ने मुलाहिजा फरमाया कि वो लड़का जो सुबह शाम आपकी खिदमत में हाजिर होता था, चंद दिनों से नज़र नहीं आ रहा। इसके बारे में मालूम करवाया कि वो कहाँ है। आपको बताया गया वो तो बीमार है, अपने घर में बिस्तर पर है। कायनात की मसरूफ तरीन हस्ती, इस लफ्ज़ को लिखिएगा, मैंने जान के टोन बदली है। आज हम लुक बिजी डू नथिंग वाली कैफियत में होते हैं, बड़े मसरूफ लगते हैं, कर करा कुछ नहीं रहे होते, काम तो दूसरे कर रहे होते हैं बेचारे, लेकिन हर वक्त शोर मचा रहे होते हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, बड़े मसरूफ हैं। कायनात की मसरूफ तरीन हस्ती को जब मालूम हुआ कि इनका छोटा सा खादिम बीमार है, तो इसके यहूदी होने के बावजूद तीमारदारी करने के लिए आप घर तशरीफ ले जाते हैं। अब ये हदीस सुन लीजिए, एज इट इज़ सुना देती हूँ। अनस बिन मालिक से ये रिवायत है, इमाम बुखारी ने इसको अपनी किताब में नकल किया कि अल्लाह के रसूल जब इसके घर पहुंचे तो इस यहूदी लड़के का बाप भी घर में मौजूद था। इस बच्चे की खुशकिस्मती के क्या कहने के अल्लाह के रसूल इसकी तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए हैं। ऐसी बीमारी पे बंदा कुर्बान जाए जहाँ अल्लाह के नबी आ जाए आपको देखने। ये चारपाई पर लेटा हुआ है, अल्लाह के रसूल इसके सरहाने बैठ जाते हैं, इसे शफकत भरी निगाहों से देखते हैं, इसका हाल पूछते हैं। आपको मालूम हो गया कि इस बच्चे का आखिरी वक्त आ चुका है। इस पर नजा का आलम तारी है। ज़रा अल्लाह के रसूल की लोगों से मोहब्बत और खैर ख्वाही मुलाहिजा करें, इसको भी नोट करें। दिलों में नरमी लाइए, लोगों के लिए मोहब्बत लाइए। अल्लाह के नबी ने मोहब्बतों के साथ ये पैगाम फैलाया था। आप तो मैदान जंग में भी आए हुए दुश्मनों को जब कभी उन्होंने आकर पनाह मांगी तो पनाह दे दी। आप पे तलवार उठाने वालों को अल्लाह के नबी ने कैसे माफ़ किया, ये तो सीरत आप सुनते ही जाएंगे और पढ़ते ही जाएंगे। लेकिन आप वाकई जान रहे थे कि ये बच्चा अब दुनिया से जा रहा है, हो सके तो इसे अजाबे जहन्नम से बचाने की कोशिश की जाए, चुनाचे इसकी ज़िंदगी का चिराग गुल होने से कबल अल्लाह के रसूल ने इस लड़के को मुखातिब किया और फरमाया, या फलानो कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ए बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। दावत दी, ये होते हैं दाइये दीन, आखिरी वक्त तक ये फतवे नहीं देते, इन्होंने नहीं बदलना, इनको नहीं पता, इनमें कोई नहीं, छोड़े जी बता दिया था, वो मैं गई थी एक दिन बता के आ गई थी, वो मैंने एक दफ़ा बता दिया था, बुलाया था, वो नहीं आएंगे। हम तो अपने मुसलमानों के से रौनक से बात करते हैं, गैरों की बात तो छोड़ दें। इस्लाम कबूल कराना तो दूर की बात है, हम तो कुरान नहीं कबूल करा पाते। कितनी रौनक से हम खैर से फ़ायदा उठा रहे होते हैं, दूसरे को कहते हैं सबको पता है, और कुछ के बारे में तुमने लिखा है, उन्होंने कोई नहीं आना, वो नहीं आती, मैं नहीं बुलाऊंगी उनको, वो दरसों में नहीं आती, नहीं, वो मेरी ऐसी दोस्तें नहीं है, वो फलां नहीं है। देखिए, याद रखिए, मोहब्बत से जो बात कहेंगे उसका असर होगा। मोहब्बत ही है जो दिलों को मुसख्खर करवाती है। जब अल्लाह के नबी की ये बात उस लड़के ने सुनी तो आंखें खोल कर आपके रुख अनवर को देखा। आप इससे फरमा रहे थे, कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह। इस लड़के ने अपनी करवट बदली और अपने चेहरे को अपने करीब खड़े वालिद की तरफ किया और सवालिया नजरों से वालिद की तरफ देखने लगा, इजाजत तलब करने लगा। इसका बाप अल्लाह के रसूल पर ईमान न लाया था मगर वो जानता था। इस जुमले को भी लिखिए कि ये सच्चे नबी हैं, इसको भी नोट कर लें। कितने ही लोग हैं उनके दिल गवाही दे रहे होते हैं कि ये सच है, ये हक है, लेकिन बीच में वो सारे तासुबात, हसद होना और न जाने क्या क्या जज्बात आ जाना नहीं मानते। और चीज को जिस रंग से देखेंगे ना, आपको वो वैसे ही दिखेगी। अब उसको पता था कि आप सच्चे हैं, अपने बेटे से कहने लगा, अति अबुल कासिम, अबुल कासिम की बात मान लो। और आप जानते हैं कि अबुल कासिम नबी सल्लम की कुनियत थी और ये आप ही की कुनियत थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं इस पर अमल करो। इसके बाप ने जैसे ही इजाज़त दी, लड़के के होंठों से आवाज़ आने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नक रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। ज़रा सा महसूस करें नबी के दिल को कितनी ठंडक पड़ी होगी, कितनी औस पड़ी होगी दिल के ऊपर खुशी से कि अल्लाह ने इस बच्चे को जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया। इधर इसकी ज़ुबान से ये कलेमात निकले और उधर उसकी ज़िंदगी के बकिया लम्हात तेज़ी से ख़त्म होने लगे और इसने चंद आखिरी सांसें ली और इस दार फानी से रुख्सत हो गया। यहाँ एक बात अभी से नोट कर लें, पारा नंबर 7 में कौल की बात बहुत है। बात जुबान से जो बात निकलती है उसका असर होता है। सोच के बोलेंगे, सोच के कहेंगे, सोच के बातें होंगी। एक कौल कसम का होता है, उसका कफारा भी आपको इस बारे में मिलेगा। और एक वो कौल है जिसने लोगों को जन्नत दिलवा दी, इंशाल्लाह पारे के साथ साथ चलेंगे। लेकिन यहाँ याद रखिए कि जब वो बच्चा चंद सांसें लेकर इस दारे फानी से रुखसत हुआ, अल्लाह के रसूल उसके घर से बाहर तशरीफ लाए, आप मुतमईन हैं, आप अल्लाह का शुक्र और अल्लाह की हम्द और तारीफ बयान कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनकज़हु बी मिनन्नार। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी वजह से इस लड़के को जहन्नुम की आग से बचा लिया। ये अल्फाज सही बुखारी में 1356 में भी हैं, सुनन अबी दाऊद में 3095, मुस्नद अहमद में भी है और सुनन निसाई अल कुबरा में भी है। आप और मैं अपने ऊपर लें, किसी को आपकी वजह से जिंदगी मिल जाए, कोई मरते मरते बच जाए, किसी का हादसा हो रहा है और आपने एकदम उसको रोक लिया, बचा लिया, वो वक्त कितना खूबसूरत, कितना खुशी का होता है। तो आप और मैं देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम कितने आला अखलाक के थे, आप कितने रहीम और मुशफिक थे। आप मुसलमानों के लिए ही नहीं, काफिरों और यहूदियों के साथ भी अच्छा सलूक करने वाले थे। बदर के कैदी आए तो हुक्म दिया कि इनको अच्छा खाना खिलाना, अगर मरीज हैं तो इनकी तीमारदारी कर रहे हैं। इंसानियत की फलाह और इनकी इज्जत और एहतराम इस हद तक है कि आपके सामने से एक जनाजा गुजरा तो आप जनाजे के एहतराम में खड़े हो गए। एक साहबी अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, ये तो यहूदी का जनाजा है। तो मोहसिन कायनात ने फरमाया, अलैसत नफसन, क्या ये इंसान नहीं है जी। और एक हदीस के मुताबिक इस वक्त तक खड़े रहे जब तक जनाजा निगाहों से ओझल नहीं हो गया। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात को सुन के परेशान हो जाएं, तो रेफरेंस ले लीजिए सही बुखारी की रिवायत 1312 और सही मुस्लिम में 961 में यह हदीस मौजूद है। यहूदी लड़का आपका खादिम था, वो कोई अमीर कबीर शख्स ना था और ना ही किसी कबीले का सरदार था। आप कायनात के वासियों को, पूरी नौ इंसानी को अमली सबक देना चाहते हैं कि इस्लाम में अखलाक किसको कहा जाता है। अगर छोटा आदमी भी बीमार हो तो इसकी तीमारदारी करनी चाहिए, ये नुक्ता नोट कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमा रहे हैं, सल्लु अला अखीकुम, अगला मरहला। अब वो मुसलमान होके मरा है तो कहा आपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ो, ये मुसलमान है, इसको आप जन्नत की बिशारत पहले ही दे चुके हैं। इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी वजह से उसे जहन्नुम से बचा लिया। ये सुनन कुबरा निसाई की रिवायत है और मुसद्रिक हाकिम में भी है। तो फिर जुमला लिख लीजिए, हमारे नबी, प्यारे नबी लोगों को जहन्नुम से बचा कर बहुत खुश और मुतमईन होते थे, लेकिन अगर वो इस्लाम कबूल ना करते तो आपकी जो कैफियत थी वो सूरत कहफ की आयत नंबर 6 में है, फलअल्लाका बाकियुन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम यूमिनू बिहाज़ल हदीसी असफा। आप शायद इन काफिरों के पीछे अपने आप को हलाक कर डालेंगे इस गम से कि ये लोग कुरान पर ईमान क्यों ना लाए। तो कहिए कि वरफा नलक ज़िक्रक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, आप और मैं उसी नबी के उम्मती हैं, हमें उन्हीं के साथ अपने मामले को बेहतर करना है। तो इस पूरे पारे में आप नबी सल्लम को बाहसियत दाई दीन, बाहसियत मुशफिक, बाहसियत एक हकीम इंसान देखेंगे, और लोगों के लिए आपके दिल में इस चीज़ की तड़प थी कि काफिर नहीं कुफर ख़त्म हो जाए। तो मैं इस बात पे एक जुमला बोलने की इजाज़त मांगूंगी कि इस्लाम की लड़ाई काफिर से नहीं कुफर से है। लोगों के कुफर को ख़त्म करिए, जिंदगी भर उन तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते रहें। हाँ, फिर जब वो अपनी सख्ती, दिल की सख्ती, तकब्बुर, रौनत की वजह से अगर स्टबन हो, अपनी बात पे जमे रहें, हक को जान कर, हक को पहचान कर, सब कुछ कर करा कर भी फिर अपनी जगह पे रहें, तो फिर आपके मेरे लिए तो इस बात की भी इजाज़त नहीं है कि हम उनके लिए दुआ मगफरत करें। यही अल्लाह का फैसला है, यही अल्लाह का हुक्म है, और यही इस्लाम की सच्चाई है। और ऐसे काफिर फिर जब खुल कर सामने मैदान जंग में आ जाएं, तो फिर उनकी गर्दनों से या उनके कंधों से उनके सर का बोझ उतारने में भी कोई कबाहत नहीं है। लेकिन राह चलते आम लोग जिन तक पैगाम ही नहीं पहुंचा, आप आज अपने मुसलमानों को देखिए, हमारे कितने मुसलमान बच्चे हैं जिनको कुरान आता है। जिस तरह आज उम्मत मुस्लिमा के जवान बच्चे हैं, उस नस्ल को कुरान नहीं आता ना, उन्होंने दीन को सही नहीं लिया, सुना सुनाया, और खानदान और बिरादरी का दीन है ना। तो आज के यहूद, आज के नसारा, आज के हनूद, और आज के आलमोस्ट सारे ही मुआशरों के यूथ का यही हाल है, क्योंकि ख्वाहिशों का दीन जो है शहवात है, दुनिया की तरफ आना जाना है, तो नतीजा क्या निकलता है कि वो फिर अपना भी नहीं जानते। तो बताइए, ये चीज़ें तो आप कभी हमसे सुनिए जो वेस्ट में रहते हैं, और क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि दिल शुक्र से भर जाता है कि अल्लाह तूने हमें इनकी हिदायत का ज़रिया बना दिया। अब बस चंद बातें इस बारे से मुतल्लिक हैं, इस बारे में हम देखेंगे कि कैसे सूरत मायदा का आखिरी हिस्सा हमारे सामने आ रहा है, हबशा के नसारा की बात है जिससे पारा शुरू होगा, फिर उसके बाद हराम और हलाल की कुछ बातें आएंगी, फिर कसम का कफारा। आपसे कोई सवाल कर सकता है कसम खा ली अब क्या करें, तो वो इस बारे में दिखेगा। फिर हराम चीज़ें जिनका तذکرہ पीछे चला, इसमें दोबारा खमर, मैसर, अंसाब, अजलाम, इन सब को रिस्सु मिन अमली शैतान कहा गया। फिर इस बारे में एहराम की हालत में अगर शिकार करना है तो उसके बारे में क्या हुक्म है, बेफायदा सवालों की ममानियत है इस बारे में, मुशरिकाना रसूमात हैं, और फिर सूरत के आखिर में अंबिया कराम से क़्यामत के दिन जो सवाल होना है उसका तذکرہ है, जिसकी वजह से अंबिया कराम बहुत ही परेशान थे। और सूरत का नाम मायदा क्यों है, ये आपको बिल्कुल सूरत के आखिर में दिखेगा। अलूहियत ईसा और मरियम की नफ़ी भी दिखेगी, यानी आखिर को बहुत अहम है, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की घबराहट आपको नज़र आएगी, और आखिर में फिर अल्लाह मुख्तारे कुल है, इन तो अज़िब हूँ फ़ैन नम इबादुक व इन तगफिर लहुम, और फिर निजात सच में है। قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم, सच्चों को उसने सच काम देगा, यानी तौहीद, मवाहिद होना, एक होना। हजरत इब्ने अब्बास इस बात पे कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है कि अल्लाह एक है। इसके बाद इसी पारे में सूरत अल अनाम शुरू होगी। अनाम का लफ्ज़ मवेशी, कैटल्स के लिए आता है। इस सूरत में चूंकि कुफारे मक्का की वो रसूमात जो जानवरों के नाते से थी, इसके नाम पे, उसकी कब्र पे, उधर ये वो, यानी उन्होंने भी हलाल हराम की एक शरीयत बनाई हुई थी खुद साख्ता किस्म की, जैसे आज हमारे कल्चर में भी आपको बहुत कुछ दिखता है। तो सूरत अल-अनाम बड़ी अहम सूरत है, पूरी सूरत एक को में नाजिल हुई, इसकी एक एक आयत के साथ फरिश्ते उतरे थे, इससे ज्यादा क्या बताऊं। आप इस सूरत की तफसीर और इसका नज़्म जली और बाकी सुने तो आपका भी दिल चाहेगा कि हम इस पूरी सूरत को इकट्ठा पढ़ें, जिसमें बहरहाल तौहीद, रिसालत, दीगर अंबिया की बातें, क़यामत, कुदरत इलाही की बहुत सारी चीज़ें हैं। जिसमें फिर मुशरिकीन से कुछ सवालात हैं, मुजरिमीन की कुछ तमन्नाएं हैं और अहले बातिल की मजलिसों से हमें बचने का हुक्म दिया हुआ है। फिर उसमें वाक्य आएगा इस पूरे पारे में मार्फत हक, और साथ ही साथ आपको इसमें तलाश हक भी दिखेगी। मुशरिक बाप का मवाहिद बेटा, एक कहानी पढ़ेंगे इब्राहिम और उनके बाप आज़िर की। इस पारे की एक अहम बात नोट कीजिए, 18 18 अंबिया कराम का तذکرہ अल्लाह ताला ने इसमें किया है, जिनके नामों को अगर आप लिस्ट आउट करके देखें तो आप हैरान होंगे कि उलुल अजम पैगंबर हैं, और इन सब को एक रोल मॉडल बनाकर पेश कर दिया इसमें, और शिर्क की कबाहत से हम सबको बचा दिया। इस पारे के एंड पे अल्लाह ताला की जात और सिफात पर कुछ दलाइल हैं, और अल्लाह ताला को कोई देख नहीं सकता लेकिन वो आपको मुझे देखता है, तो इतना खूबसूरत पारा। बिल्कुल वही बात आज फिर कहूँगी कि खाना पका कर 10-15 चीज़ें कोई बैठा हो और उसका दिल हो कि जल्दी से आए और खाने वाले खा लें, यही मेरे दिल की कैफियत इस वक्त आप लोगों के लिए होती है। आप इतनी मोहब्बत से आकर यहाँ बैठते हैं और आप सुनते हैं, तो मेरा भी दिल चाह रहा होता है कि मैं एक एक चीज़, एक एक लफ्ज़ आपके लिए खोल दूं। तो आइए अब आयतों के साथ साथ चलते हैं और दुआ करते हैं कि इस खूबसूरत से पारे का हम हक अदा कर सकें। सूरत माईदा आयत नंबर 83 से ये पारा शुरू होता है। वह इज़ा समी उमा उन रसूली तरा आयु नहुम तफी मिन दम इमिम्मा रफू मिनल हक यकुलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन। और जब वो रसूल की तरफ नाजिल करदा कलाम को सुनते हैं तो आप इनकी आंखें आंसुओं से बहती हुई देखते हैं, इस सबब से कि उन्होंने हक को पहचान लिया। वो कहते हैं कि हमारे रब हम ईमान ले आए, बस तू हमको भी इन लोगों के साथ लिख ले जो तस्दीक करते हैं, और हमारे पास कौन सा उजर है कि हम अल्लाह ताला पर और जो हक हम पर पहुंचा है इस पर ईमान न लाएं, और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रिफाकत में दाखिल करेगा। ये है जी मार्फत हक। ज़रा सा रुकिए। वो ग्रोह जो के हबशा से आया था अल्लाह के नबी से बात सुनने, उनके दिल पाक थे। लिखिए, हर सुनने वाला अच्छी नीयत से नहीं सुन रहा होता। कभी कभी आप किसी को ज़बरदस्ती सुना रहे होते हैं, जैसे अपने बच्चों को अक्सर ही आप सुनाते रहते हैं बातें, कभी खरी खरी और कभी कड़वी और कभी मीठी, लेकिन वो एक कान से सुनते हैं दूसरी से नहीं सुनते हैं। तबलीग का एक नुक्ता नोट कीजिए, और इस बारे में आपको हज़रत इब्राहिम के नाते से भी बहुत खूबसूरत तबलीगी नुक्ते दिखेंगे। तो जब कोई सुनने के लिए तैयार हो तो आपकी बात उसके दिल पे ऐसे पड़ती है कि उसको हक समझ आने लगता है। हक की पहचान थी, अल्लाह का कलाम इंसान के दिल दिमाग में उतर जाए तो आंखों से आंसू बह निकलते हैं, इंसान हक का गवाह बन जाता है, तमन्नाओं का मरकज बदल जाता है, तासुब मसलहत आड़े नहीं आता और दिल नरम हो जाते हैं। तो आज से एक बात लिख लीजिए मेरे जैसे और भी लोगों को परखने की, हक को बयान कर रहा है कि बातिल, ना हक बातें हैं कि ख्वाहिशें हैं कि लोरी हैं कि दिलासे हैं कि सिर्फ ऐसी वैसी बातें। तो हक की एक पहचान है, हक को सुनते दिल नरम होने लगता है। हक वाले की बात में कशिश होती है, हक वाले की बात सुनकर दिल नरम होता है, अमल करने को दिल करता है। तासुब अपनी जगह, बातें अपनी जगह, लेकिन इंसान उसको सुनता है आहिस्ता आहिस्ता किबले बदलने लगते हैं। हक एक खोया हुआ बच्चा है। कभी आपने एयरपोर्ट पे अपने प्यारों को रुख्सत होते या करते हुए देखा है? 8 साल 10 साल से आप सऊदीया में थी, आप वापस नहीं जा सकी, और फिर जब आप इंडिया गई, आप पाकिस्तान आई, तो एयरपोर्ट पे अपनी माँ को देखा, भाइयों को देखा, बहन को देखा, क्या कैफियत हुई? आंखों में आंसू नहीं आते, बस उसको लिख ले हक खोया हुआ बच्चा, जो हर बंदे की फितरत में पड़ा हुआ है। हम सबको हक चाहिए, इसीलिए इस बारे में आप देखेंगे शराब की कतई हुरमत का तذکرہ करते हुए अल्लाह ताला ने फितरतों को छेड़ा है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनकी आंखों के आंसू कबूल किए और फिर साथ ही क्या कर दिया, फअसाबहुमुल्लाहु बिमा कालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। इसलिए इनको अल्लाह ताला इनके इस कौल की वजह से ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और इसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और नेक लोगों का यही बदला है। इसके बरक्स और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाते रहे वो लोग दोजख वाले हैं। इस आयत में लफ्ज़ बीमा कालू को बस हाईलाइट कर लीजिए। हम तो कहते रहे हमेशा से कि जन्नत अमलों से मिलती है, अमल से ज़िंदगी बनती है, तो यहाँ तो कौल से मिल रही है। बात से मिल रही है क्यों? इसलिए कि ये कॉल नहीं था, ये इनकी शख्सियत के टूटने फूटने की आवाज़ थी। इस कॉल ने इनके अंदर एक ऐसी हलचल पैदा कर दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कॉल कौन सा था? अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह तो इतना मजबूत कलमा है कि जो पहाड़ों को अपनी जगह से हटा दे। इसीलिए फिर आगे अल्लाह ताला ने उन लोगों की बात करके कि जिनके दिलों पे हक असर नहीं करता, दोबारा ईमान वालों को पुकारा। और आप देख रहे हैं कि सूरत मायदा में बार बार ईमान वालों को पुकारा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा हल्लल्लाहु लकुम वला तअतू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुतदीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं इनको हराम मत करो। इसको भी नोट कीजिए। आज हमारा मजहबी तबका अमूमन इस किस्म की अफरात और तफरीत का शिकार हो जाता है कि वो अल्लाह के हलाल को भी हराम करार दे देता है कई दफ़ा। और हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ताला ने जो चीज़ें तुमको दी हैं इनमें से हलाल मरगूब चीज़ें खाओ, और अल्लाह ताला से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह ताला तुम्हारी कस्मों में लफ कसम पर मुआखज़ा नहीं फरमाता। इस आयत का आप नंबर नोट करना चाहें तो कर लें। कभी कोई पूछ सकता है कि आपने पूरा कुरान पढ़ लिया तो कसम का कफारा किस आयत में है? तो आयत नंबर 89 सूरत मायदा, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अय्मानिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी कसमों में लफ कसम पर तुम्हारा मुआवजा नहीं फरमाता, लेकिन मुआवजा उस पर फरमाता है कि तुम जिन कसमों को मजबूत कर दो, इसका कफारा 10 मोहताजों को खाना देना है, और औसत दर्जे का जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या इनको कपड़े देना है, या एक गुलाम और लौंडी को आज़ाद करना है, और जिसको इसकी कुदरत ना हो तो 3 दिन रोजे हैं। ये तुम्हारी कस्मों का कफारा है जबकि तुम कसम खा लो और अपनी कस्मों का ख्याल रखा करो। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे वास्ते अपने अहकाम बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। एक कॉल का इतना बड़ा कफारा। तो कॉल के लफ्ज को नोट कीजिए। इस बारे के साथ आपका होमवर्क भी है कि अपने मुंह से निकलने वाली बातों को नोट करें। सारा दिन क्या बोलती रहती हूँ, क्या मेरी जुबान से निकलता है, क्या कहती सुनती रहती हूँ, इसको महसूस कीजिए। और अब आगे एक और चीज जो हराम चीजों में बदतरीन थी, आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इस बारे में इंसानियत की सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली चीज शराब को हतमी तौर पे हराम कर दिया। इसको जरा सा देख लेते हैं कैसे। या अय्युहल्लज़ीना मनु इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतानी फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। बहुत सारे लोग शराब को हराम नहीं समझते, कहते हैं कि लफ्ज़ हराम नहीं आया, हालांकि सूद पे हराम का लफ्ज़ भी आ गया फिर भी नहीं छोड़ पाते। तो ज़रा सी इस आयत पे गौर करेंगे। ऐ ईमान वालो, बात यही है कि शराब और जुआ और थान और पानसे के तीर ये सब गंदी बातें हैं, शैतानी काम हैं, इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलाह याब हो सको। अल्लाह अकबर। आइए ज़रा तदब्बर करते हैं और आयात पर अमल की बातें लेते हैं। पहली बात यह है कि नेक साथियों की तलाश कीजिए और हमेशा उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करें, क्योंकि नेकों का साथ हबशा के लोगों को जन्नत दिलवा गया। अगली बात, अगर आप अपने माल या हाथ से कोई नेकी नहीं कर पा रहे, नहीं है हालात, नहीं है आपके पास माली वसत, नहीं अपने हाथ से कोई काम कर सकते, तो भली बात मुंह से कह दिया करें, इस पर भी सवाब मिलेगा। लोगों को अच्छी बात कह दें, किसी का दुख सुन लें, किसी को दिलासा दे दें, किसी को दीन की दावत दे दें, किसी को किसी अच्छे काम पे अप्रिशिएट कर दीजिए। और इसी तरह जिक्र अस्कार तो अपनी जगह पे हैं। इसी तरह लोग जिस हराम गजा के बारे में ना वाकिफ हैं इसकी आगही के लिए काम करें। यानी अगर अभी भी कुछ लोगों का ख्याल है कि शराब तो हराम ही नहीं, तो आज इस बारे में इसके बारे में जानकर ज़रूर दूसरों को इसके बारे में बताइए। इसी तरह कुरानी रहनुमाई क्या है? अल्लाह ताला से अच्छी तवक्को रखिए और हमेशा उसकी रहमत की उम्मीद रखिए। अल्लाह के नबी बाहसियत उम्मीद के भी दिखते हैं आपको, पुरउम्मीद शख्सियत थे आप, हमेशा लोगों को तसल्ली देते हैं। आज देखिए, उस बच्चे को आग से बचा लिया अल्लाह के हुक्म से। अगर कहते छोड़ो मैं क्या करूं, ये कहाँ बचेगा, आप तो ये मर ही रहे, खा पी रहे, तो नहीं, आप तो मैदान जंग में जख्मों से चूर लोगों को भी नसीहत और वाज फरमाया करते थे। इसी से पता चला कि फलाह पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान हर ऐसी चीज़ से दूर रहे जो इसकी अक्ल पर पर्दा डाल दे, और बहुत ज़्यादा कस्में खाने से अपने आप को महफूज रखना। फिर गौर व फिक्र की चंद बातें, इंसान को ये जायज़ नहीं कि हलाल करदा चीज़ों पर पाबंदी लगाकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। यहाँ छोटी सी बात करूँगी, यहाँ ये मौजू अपनी पूरी खूबसूरती के साथ हमारे सामने है, तो याद रखिए अल्लाह ताला जिस तरह हमें रोज़ा रखवा कर खुश होता है, इसी तरह खाता पीता देकर भी खुश होता है। अल्लाह ताला जिस तरह हमें आजिज मिजाज देखकर, तवाज़ो वाला देखकर खुश होता है, इस तरह अच्छे कपड़े पहने हुए देखकर भी खुश होता है। अल्लाह ताला हमें अच्छे घरों में रहता देखकर भी खुश होता है। क्यों दिया? आप देखिए, क्या एक माँ अच्छा खाना पका कर टेबल पर रखे और बच्चों से कहे खबरदार अगर हाथ लगाया? कभी ऐसी माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई बीवी ऐसी देखी आपने? कोई मर्द सारा दिन काम करे और ग्रोसरी लेकर आए, फ्रूट सब्जियां लाए और कह दे खबरदार किसी ने इसको हाथ लगाया, अक्ल में नहीं आती ये बात। कैसे मोहब्बत से ग्रोसरीज के ढेर ढेर ला ला कर घर में मर्द रखते हैं, क्योंकि वो कवाम होते हैं। तो अब ये तो इंसानी मिसालें थी। जब दुनिया में कोई आपको कुछ दे और आप उसको इस्तेमाल करें, वो खुश होता है? आपको कोई छोटी सी चीज दे और आप उसको कि मैंने इस्तेमाल की थी, आप देख लें, दिल ठंडा नहीं हो जाता उनका? तो फिर क्या पता चला, अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल ही नहीं है। वो भी आपको खाता पीता पहनता ओढ़ता देखता खुश होता है, वो आपको खुश होता देखकर भी खुश होता है। वो शौहर को बीवी से मोहब्बत भरी बातें करता देखकर भी खुश होता है। वो बीवी का अपने शौहर के लिए सजना संवरना देकर खुश होता है। वो अल्लाह ताला की नेमतों को मौसम के मुताबिक गर्मी सर्दी से आप बचते हैं खुश होता है। लेकिन बाज दफा दीन के नाम पे इतनी रिजिडिटी आने लगती है कि हम ऐसे लोगों को क्या कहते हैं। मिसाल, अब एक औरत है, शादी हुई है, नए नए दिन है, कपड़े पहनती सजती संवरती, अब घर में सास जो है उनको एतराज होना लगता है, देखो ये कपड़े घर में पहन रही है, ये इतने महंगे थे, देखो पहन के कर रही, भाई खुश हुई है वो पहन रही है तो, आपने बनाए हैं अच्छा लगता है आपको? वो कहती मैंने नहीं पहने आपके बनाए हुए कपड़े। है, कोई भी नहीं ऐसा कहता। तो चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, ये फेंकने की नहीं। अगर आपके पास कुछ है तो पहन लीजिए, और थोड़ा सा पहने और उसके बाद सदका करते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो तमाना कीजिए, जो है वो ले लीजिए, जो नहीं है बाजारों में घूमना फिरना मैचिंगों के लिए तड़पना रोना धोना ये और बात है, लेकिन अगर आपको किसी ने कुछ दे दिया उसकी खुशी के लिए पहन लीजिए, सलीके से पहनिए, सलीके से दे दीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। जब हम दीन के नाम पर खुद साख्ता सख्ती कर लेते हैं ना, तो उसका नुकसान क्या होता है? कुछ लोग तो अमल कर लेंगे, क्योंकि तबीयतन भी बाज मिजाजों में सादगी होती है, बाज लोग ज्यादा ही जोहद की तरफ होते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हदीस में आता है कि सादगी भी ईमान से, अलबजाज तुम्हें नल ईमान है, कोई बुरी बात। लेकिन अक्सरियत दूर हो जाती है, कैसे? क्योंकि इंसान का नफ्स है। अब एक लड़की है, वो गलत किस्म के भी कपड़े पहन लेती है, स्लीवलेस पहनती, क्यूलॉट्स पहनती, बाहर भी जाती है, आराइश भी करती, जिबाइश भी करती, मेकअप भी करती। अब आप उसको कहते हैं आइए इधर, आज दर्स में आइए, अब वो आ गई आपके साथ, और मैंने जो ही उनका हाल उलिया देखा मैं शुरू हो गई उन पे बातें छांटती। अल्लाह मुझे कभी जिंदगी भर इसकी तौफीक ना दे, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं। एक सिस्टर अपनी किसी ऐसी दोस्त को ले गई, जरा हाल उलिया मॉडर्न था, तो कहती जो ही वो अंदर गई, जो सिस्टर दर्स दे रही थी उनकी नजर उन पे पड़ी, उसके बाद सारा दर्स उन पे हो गया, कबूतरियां और कटे हुए पार और फुला फुला, कहती वो वहां से ऐसे निकली, कहती आज के बाद मैं कभी दर्स में नहीं आऊंगी। आप क्या कहते हैं? आप पता, लोग खाने के लिए आते हैं, फितरत है। अल्लाह के नबी का भी आगे सुनेंगे आप, मोहम्मद अरबी में खाने पे बुलाया था लोगों को, दर्स की दावत दी, तभी तो तुम्हें मिला ना। आपको मुझे भूख लगती है, अच्छा लगता है खाना खाना, नींद आ रही है, अगर आपको कोई छोटी सी चीज दे दे तो अच्छा लगता है। तो अब आप ये कहेंगे कि जी खाने खिला खिला के लोगों को पढ़ा रहे हैं, लो जी लोगों को ये अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर दिखा कर बता रहे हैं? नहीं, ये आपकी सोच, ऐसा नहीं होता। मेरी कोई चीज अगर किसी नए बंदे को दीन पे बुलाने के लिए मददगार है, मैं उसको सबसे पहले पहनूंगी, और अल्लाह जानता है, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप तो माशाल्लाह सारे ही नए हैं और स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं आप में से। मैं किसी के घर के दर्स में जाऊँ ना, तो मैं अपना बेहतरीन सूट लेती हूँ, मैंने नहीं लिया होता, मैं अल्लाह का शुक्र है मुझे ना शॉपिंग की जरूरत है, ना शौक है, ना दिल है, जो मेरे पास उस वक्त मुयस्सर बेहतरीन इजी मुनासिब चीज होगी मैं वो पहन के जाती हूँ। अक्सर वहीं जाके पहनती हूँ, बाहर मैं ऐसे ही आती हूँ जैसे अब आपके सामने आती हूँ, इसी अबाये में, इसी निकाब में। आप मुझे व्हाइट हाउस में ले जाए, मैं जाने को तैयार हूँ, मैंने अमेरिका से लेके पूरी दुनिया के जिधर भी मैं गई हूँ इसी अबाये और इसी हिजाब में मैंने कितने उम्रे किए हैं, कि मैं नहीं देती पुरानी चीजें, मुझे अच्छी लगती है, इजी फील करती हूँ, मुझे शर्म भी नहीं। मैं आज आपके सामने उसी अबाये में पढ़ा रही हूँ, मुझे कोई गिल्ट नहीं है कि मैं कोई जोड़ा छोड़ा पहन के आती, नहीं मुझे इजी लगता है इधर ऐसे, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा गोल है और आप सब मेरे अपने साथी हैं, मुझे पता है आप आ गए, आप आने वाले हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी कोई और आया, अब यहाँ कोई आया और उनके ऊपर हम तनकीद करेंगे, वो नहीं आएंगे। ये बात ही ना, तो मैं अल्लाह ने बता दी कि देखो दीन के नाम पे सख्तियां ना करो, लोग दूर हो जाएंगे। आपको मुझे हक ही नहीं है, लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक। आगे पढ़ेंगे सूरह तहरीम में अल्लाह ने प्यारे नबी को कह दिया कि आप कैसे एक हलाल को हराम करें। ठीक है, आप ना पहने कोई बुरी बात नहीं है, आप ना खाएं कोई बुरी बात नहीं है, और लोगों के लिए छोड़ देना, याद रखिए ये भी झूठा तकवा है। अकेले में आप सब करते हैं, खूब खाते हैं, मुर्गियां मुसल्लम खाते हैं, दूसरों में कहे नहीं मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, हाय लोग कहेंगे दीनदार खाना खा रहे हैं। फिर लोगों ने लतीफे भी बना दिए दीनदारों पे खाने पीने की बातों के। आप अकेले में दूसरी जगह में खूब अच्छे पहने ओढ़े, शादियों में जाएं, दावतों में जाएं, फैमिली में जाएं, और दर्स में आए तो कि नहीं ना फिर वहां तो मेरे लोग हैं मुझे देखेंगे। ये झूठा तकवा है। रियाकारी दो तरह की होती है, एक नेकियों का दिखावा होता है, गुनाहों का भी कुछ मामला होता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि वो इजी रही है। देखिए इस वक्त कितना अच्छा टेम्परेचर है, ना गर्मी ना सर्दी, बाहर एसी लग रहे हैं, हमने इस रूम का बंद भी कर दिया तो हमें गर्मी नहीं लग रही। अब यहाँ फुल एसी खोल दें तो हम ठुठरेंगे, और अगर आप सारे रूम बंद करके एसी बंद करेंगे तो गर्मी आएगी। तो नॉर्मल रहे। मेरी नजर में दीनदार कौन है, ये मेरी गलत तफसीर भी हो सकती है, आपको पूरा हक का एतराज कीजिए, लेकिन मुझे ये फील होता है दीनदार एक नॉर्मल शख्स लगता है, जिसके पास आकर दूसरों को ठंडक मिले, जिसको देख के लोग गुनाह में या गिल्ट का शिकार ना हो जाएं, और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चले। लेकिन याद रखिए इन सब में कहीं को हराम नहीं, इसमें कोई शुबे वाली चीज नहीं, कोई गलत चीज नहीं। जहां इजाजत है वो ले लीजिए, वो शरीयत की रस्सी गले में है, वो 10 फुट की है, बस 10 फुट के अंदर जो चाहे करे, जो मर्जी करे। और ऐसे बंदा हल्का फुल्का रहता है, रिलैक्स रहता है, खुश रहता है। और जब आप बेजा बोझ उठाते हैं, आप जेहन में लाइए ना कोई 20 किलो का बैग उठा के चल रहा है, 5 मिनट बाद थक जाएगा। और अगर आपको खाली हाथ वॉक करनी है, लाइए आप 5,000 स्टेप मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ शाम को जाने को तैयार हूँ। तो दीन को बोझ ना समझें, दीन को खूबसूरती पे लीजिए। ये आपको इसमें गौर व फिक्र का गोशा मिला। फिर अगली बात तेजी बात, ऐसी चीजें जो लजीज भी हों और जायकेदार भी हों और इंसानी तबीयत इनको पसंद भी करे। अब इस पे खाने पीने की बातें कर लें, क्या दीन आपको ये कहता है कि आप बासी चीजें खाएं, गली सड़ी खाएं? कुछ बातों को मिसाल बनाकर हम अक्सर सुनाते हैं, वो सूखी रोटियां ईद वाले दिन खा रहे थे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो। सूखी रोटियां तो खा लीजिए, अल्लाह जानता है आज तक घर में एक क्रम भी जाया नहीं होने दिया मैंने, और यही हमारे हर स्कूल हर इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्शन है। साथ ही कहते हैं हमने आप लोगों से सीखा है, शुरू से बचपन में नहीं था, एक चावल का दाना भी अगर किसी को मैं धोते हुए देख लूँ ना कि उसमें गिर गया सिंक में, तो मेरी जान पे आती है कहाँ से ये दाना चला, मट्टी में गया, बीज बना किया लिया आज करा के आपके घर आए, सिर्फ इसलिए कि आप इस बेचारे को फेंक दें। एक सौंफ फेंक दी आपने, एक लौंग फेंक दी, आप ऐसे आधा खाते हैं आधा फेंकते हैं, और वल्ला ही मैंने देखा है कि जितना खाना होता है उतना ज्यादा फेंकता है। ऐसा ना कीजिए, हमेशा खाइए, अच्छा खाइए, साफ सुथरा खाइए, हाइजीनिक खाइए, गंदा ना खाइए, बहुत ज्यादा फ्राई चीजें ना खाइए। रमजान में क्या करने हैं आपने मुझे तो नहीं पता कि आपके क्या प्लान्स हैं, लेकिन नो फ्राई थिंग, जीरो ऑयल और जीरो शुगर रोजे रखिए, फिर देखिए आपकी तबीयत में जो हशाश विशाश पन आता है और बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा इंशाल्लाह उससे फायदा। और आप देखिए कि फितरत हमेशा अच्छी चीज को पसंद करती है। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि इन चीजों में से शराब की बात हुई, आप लोग कहते हैं शराब हराम नहीं, किधर है लफ्ज, आप देखिए अल्लाह ने क्या क्या लफ्ज कह दिया। रिज्स आप सब जानते हैं, घिन फिल्थ, कभी आज तक किसी ने ये कहा कि पेशाब हराम है ये ना पियो? सोच के भी, मेरी बात सुन के भी आपको बुरा लगा होगा। किसी ने कहा ये फुजला है इसको मत खाना ये हराम है? किसी ने कहा? बच्चा भी अपनी गंदगी को देखकर घबरा जाता है। तो लिख लीजिए फितरते सलीमा, हलाल और तैयब का फर्क जानती है, हराम और खबीस से। शराब हराम है, फितरते सलीमा वाले शराब, शराब से करीब किसी चीज के करीब नहीं जाते। अंगूर खाएं, आपने गिलास उड़ा के क्यों खाने हैं? घर में जरा अंगूर की शक्ल बदल जाए कोई नहीं खाता, फिर या तो उसको चाट में खपाओ या उसको समुद्री में डालो, या फिर घर वाली खातून खाएगी या बेचारी मेड्स खाती हैं। नहीं, आप अनार का जूस पिए, फ्रेश पिए, आप क्यों उसको जलास रख के करते हैं? तो याद रखिए शराब को हराम कर दिया गया मुतलकन। एक गैर मुस्लिम ने एक मुसलमान से कहा कि तुम मुसलमानों के लिए अपने जवान बच्चों की तरबियत बहुत आसान है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कहा कैसे? कहा तुम तो हर जगह मजहब की आड़ लेकर बच्चों को रोक लेते हो, शराब नहीं पीना, पब्स में नहीं जाना, नाइट क्लब्स में नहीं जाना। हमें नहीं पता हम अपने बच्चों को क्या कह के रोके। और आपको पता है दुनिया में, बल्कि अमेरिका में 19 सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्ट में शराब मतलब इलीगल कर दी गई थी, कई साल तक रखा गया उसको, लेकिन बिलाआखिर पे वो पाबंदी उठा ली गई। लोग नहीं मानते क्योंकि जब अंदर तकवा नहीं, वही बात जो आपको आज कहा है ना कि जब सुनने के लिए कोई तैयार हो फिर सुनाइए। आप भी तब सुना करें जब आप मानने के लिए तैयार है। ऐसे चलते फिरते उठते बैठते खाना पूरी का पारा ना किया करें, बैठ के कागज कलम ले के मुसफ खोल के सुनेंगे, एक एक लफ्ज दिल में जाएगा। तो याद रखिए फितरत की पुकार क्या है कि तैयब चीजें ही इंसान खाएगा, और हलाल चीजों के इस्तेमाल में हद से आगे नहीं बढ़ना। इतना ही लेना जितनी जरूरत है, प्लेट में उतना खाना निकालिए जितना आप खा ले, 10 दफा ले ले। कभी शादियों में किसी ने रोका या टोका? आपको शर्म आ रही है ना अपने साथ बैठे हुए से, तो एक टेबल से उठकर दूसरे पे जाकर दूसरा फिर खा ले, फिर सारे हॉल में आप घूम घूम के सारे जो भी स्टेशन लगे वहां से खा ले, आपको कोई नहीं रोकेगा। बफे में आप जाइए जो खाने खाइए, लेकिन वो खाने के पहाड़ बना के प्लेटों के ऊपर एक पूरा नक्शा जमीन का बनाना, ये तो दुरुस्त नहीं होगा ना। फिर इसी तरह कपड़ों में भी कमी बेशी रखिए। वल्लाही मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं 5,000 रुपये पाकिस्तान की बोल रही हूँ, मुझे उन्हीं की पता है मैं 5,000 की चीज अपने लिए नहीं खरीद सकती। मेरे दिल का छोटापन कह लें, कंजूसी कह लें, जो भी है, कहाँ 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इससे ऊपर का जोड़ा कोई खरीदे। अपनों की शादियां भी होती है, अपनों के प्यार भी हैं, पैसे की भी कमी नहीं, अल्लाह ने हर नेमत दी है, हौसला नहीं दिया। जरूरत कम कीजिए, किसी का ले ले, पहना हुआ ले ले, अपना किसी को दे दे। एक ही जोड़ा आपने अपने भाई के घर शादी में पहन लिया, अब दूसरे के भाई के घर शादी, उसको बहन तुम पहन लो, तुम पहन लो। हजरत आयशा ने अपनी शादी पे जो जोड़ा पहना था मदीना में, वो जोड़ा हर लड़की अपनी शादी पे पहनती थी। आपके मेरे अंदर क्यों इतनी अकड़ है? पैसा है ना हाथ में, वही पैसा 1 लाख रुपए का जोड़ा लेके जाने के आप उसकी को 100 ईंटें लेकर मस्जिद में डाल दें, क्यामत तक के लिए आपका असर होगा। तो हम लोग इस चीज को भी थोड़ा सा देखें। फिर इसी तरह फलाह और कामयाबी इसी वक्त पूरी हो सकती है जब अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों को छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए।